नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुजा कुमारी SNS RKS कॉलेज में इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। आज हम लोग फ्रांस के इतिहास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी, नेपोलियन थर्ड की क्या भूमिका थी, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नेपोलियन प्रथम की भांति यूरोपीय इतिहास में नेपोलियन थर्ड को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह हॉलैंड के शासक बोनापार्ट का पुत्र तथा नेपोलियन महान का भतीजा था। इसकी माता का नाम ऑर्तोश था। ऑर्तोश नेपोलियन प्रथम की पत्नी जोजेफाइन तथा उसके पूर्व पति स्वर्गीय सेनापति बुआरेन की पुत्री थी। उसका जन्म ल्यूलरिज के राज प्रसाद में 1801 में हुआ था। वह अपनी माता के साथ इटली चली गई, जहाँ पर उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया गया। इटली के देशभक्तों ने अपने देश को की राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने तथा निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासकों के अत्याचारी शासन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कार्बोनारी नामक गुप्त समिति का गठन कर रखा था। लुई नेपोलियन इसका सदस्य बन गया। वह कुछ समय के लिए जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड में भी रहा। 1832 में नेपोलियन के पुत्र रोम के बादशाह की मृत्यु हो गई और वह भी बोनापार्ट वंश का वैध उत्तराधिकारी बन गया। वह एक प्रभावशाली लेखक था और अपने आकर्षणपूर्ण लेखों के द्वारा नेपोलियन महान के कार्यों का रोचक विवरण प्रस्तुत करता था। उनके नाम के साथ जुड़ा होने के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ। उसके समर्थकों की संख्या में शीघ्र ही वृद्धि हो गई और उसने सिंहासन पर अधिकार पाने के उद्देश्य से स्ट्रासबर्ग में भीषण विद्रोह करा दिया। लुई फिलिप ने विद्रोह का दमन कर दिया और नेपोलियन को निर्वासित करके अमेरिका भेज दिया। कुछ समय के पश्चात वह अमेरिका से इंग्लैंड चला गया। 1804 ईस्वी में वह पुनः फ्रांस आया। इस समय नेपोलियन महान की अस्थियां सेंट हेलेन में से लेकर पेरिस में सुंदर समाधि स्थल स्थापित की जा रही थी। इस समय उसने बोलोन में दूसरा भीषण विद्रोह करा दिया। इस विद्रोह की असफल वैसे तो यह विद्रोह असफल रहा और सरकार ने उसे बंदी बना लिया। बंदी बना के दुर्ग में रख दिया। जिस समय वह हाम के दुर्ग में प्रवेश कर रहा था, उसी समय सम्राट नेपोलियन महान की अस्थियां समाधि स्थल की ओर ले जाई जा रही थी और पेरिस के गली कूचे नेपोलियन की जय जयकारों की ध्वनि से गूंज रहे थे। 1846 ईस्वी में वह किसी प्रकार बंदी गृह से भागने में सफल हो गया। एक मजदूर के वेश में बेडिगे नाम से पुनः इंग्लैंड भाग गया। वहाँ के पुलिस विभाग ने सोशल कांस्टेबल का कार्य करने लगा। फिर 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति सफल हो जाने पर वह पेरिस वापस आ गया। इस समय फ्रांस में निर्वाचन हो रहा था। लुई नेपोलियन में अपने चाचा नेपोलियन प्रथम के समान क्षमता, योग्यता तथा दृढ़ता नहीं थी, परंतु नेपोलियन शब्द जुड़ा था और फ्रांस की जनता इस नाम का जादू अच्छे से जानती थी। राष्ट्रीय असेंबली के लिए वह चार स्थानों से निर्वाचित हुआ, परंतु उसने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया और असेंबली का सदस्य बनना अस्वीकार कर दिया। सितंबर में वह पांच स्थानों से निर्वाचित हुआ तथा 26 सितंबर को उसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। अपनी कूटनीति तथा कार्यकुशलता के बल पर ही उसने देश की राजनीतिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया। जिसके फलस्वरूप वह 1852 में फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने सम्राट नेपोलियन तृतीय के नाम से 1870 ईस्वी तक एक स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासक के रूप में राज्य किया। 1870 ईस्वी में फ्रेंको प्रशांत युद्ध में उनकी पराजय हो गई। 81,000 सैनिकों सहित उसे बंदी बना लिया गया। 1870 ईस्वी में उसे बंदी गृह से मुक्त कर दिया गया। वह पुनः इंग्लैंड जाकर रहने लगा और वहीं उसकी मृत्यु 4 वर्ष उपरांत अफ्रीका जुलू के युद्ध में उसके इकलौते पुत्र प्रिंस इंपीरियल की भी मृत्यु हो गई। उसकी भी मृत्यु हो गई और उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। नेपोलियन तृतीय की पत्नी रानी यूजिल अधिक समय तक भी वो भी जीवित नहीं रही। उसकी मृत्यु 1920 में उस वक्त हुई जब फ्रांस की गणतंत्रीय शासक ने जर्मनी को पराजित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। नेपोलियन तृतीय के कार्यों का एक व्यक्तिगत रूप से अगर मूल्यांकन किया जाए तो पाते हैं कि नेपोलियन तृतीय के विषय व्यक्तित्व के विषय में इतनी विभिन्नताएं हैं कि विद्वान भी सरलता से किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। कुछ ने उसे एक रहस्य पहले ही कहा है। प्रसिद्ध उपन्यासकार विक्टर हुगो ने उनके अवगुणों के आधार पर नेपोलियन द लिटिल की उपाधि दी। एक फ्रांसीसी इतिहासकार के अनुसार नेपोलियन के व्यक्तित्व का आधा भाग इटली के प्रसिद्ध कूटनीतिक मैकियावेली से मिलता था और शेष भाग आधा डॉन क्विनिजेट शेख चिली से। उनके संबंध में इस प्रकार की विविधताएं देखकर प्रतीत होता है कि इतिहासकारों ने नेपोलियन तृतीय के साथ न्याय नहीं किया। वास्तव में लुई नेपोलियन अपने चाचा का अनुसरण करके ही इतनी अधिक सफलता प्राप्त कर सका, पर दुर्भाग्य से उसने नेपोलियन महान का एक भी गुण नहीं था। वह स्वयं एक निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासक था। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की न तो उसमें योग्यता थी और न ही उसे उसके साधनों का ज्ञान था। वह शक्ति के साथ कीर्ति तथा राष्ट्रीयता के साथ रूढ़िवाद का समर्थक था। इटली में एक ओर उसने आंदोलन को प्रोत्साहन दिया तथा दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए उसके विरुद्ध पोप की सहायता की। उसकी गृह नीति का आधार इस प्रकार था कि उदारवादियों तथा रूढ़िवादियों का सदा वैमनस्य बना रहा। उसकी इसी नीति से फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय गौरव को ऊंचा उठाने का इच्छुक था। इसी कारण उसने लगभग सभी देशों के मामले में हस्तक्षेप किया। इसलिए उसकी विदेश नीति हस्तक्षेप तथा गड़बड़ की नीति कही जाती है। नेपोलियन तृतीय अपने मिथ्या अभिमान तथा झूठे गौरव के द्वारा फ्रांसीसी जनता को प्रभावित करने का इच्छुक था, परंतु उनका यह धोखा आडंबर अधिक समय तक न चल सका। उसकी प्रजा उसके शासन से तंग आ चुकी थी। यदि 1870 ईस्वी में वह सीडान के युद्ध में प्रशासन द्वारा बंदी न बनाया जाता तो भी उसके पतन होने में अधिक देर नहीं थी। सोडेन के युद्ध में होनहार प्रबल वाली कहावत सिद्ध हो गई और गणतंत्र का समर्थन होने से प्राप्त किए गए उसके साम्राज्य का अंत हो गया। तेयर ने उनके साम्राज्य के विषय में कहा था, यह साम्राज्य एक वृक्ष है जो कि फुलक पर खड़ा है और जिसकी कोई जड़ नहीं है। नेपोलियन तृतीय के चरित्र में प्रतिकूलता पाई जाती है। इतिहासकार उसे राजनीतिक राजनीतिज्ञ कहते हैं, वे ही उसे महामूर्ख भी कहते हैं, क्योंकि उनका कथन है, उसने फ्रांस को अलौकिक किया और यूरोप को परेशान। वास्तव में उसके आलोचकों ने उसका ठीक-ठीक मूल्यांकन नहीं किया। इसमें संदेह नहीं कि वह एक षड्यंत्रकारी शासक था और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने उचित अनुचित का ध्यान नहीं दिया। शासन सत्ता पाते ही उसने घोषित किया कि नेपोलियन का नाम स्वतः ही एक संपूर्ण कार्यक्रम है। गृह नीति में उसका अर्थ था व्यवसाय, अधिकार, धर्म, जनता का कल्याण तथा विदेश नीति में फ्रांस के गौरव की वृद्धि करना। नेपोलियन तृतीय अपने महान चाचा की भांति अपनी विजयों द्वारा फ्रांसीसियों के गर्व तथा अभिमान की भावनाओं को संतुष्ट करना चाहता था। आरंभ में उसने सम्मानपूर्ण विजय प्राप्त की, परंतु अंत में 1860 ईस्वी में उसका पतन होना शुरू हो गया। नेपोलियन तृतीय के विचार में राज्यों को जीतने की अपेक्षा मनुष्यों के हृदय को जीतने का अधिक महत्व था। उसने एक बार घोषणा की थी, साम्राज्य का अर्थ है शांति, क्योंकि फ्रांस इसे चाहता है और यदि फ्रांस संतुष्ट है तो वह विश्व में शांति है। इस प्रकार नेपोलियन तृतीय के व्यक्तित्व में विभिन्न गुण दोष का मिश्रण था, जिसके कारण वह असफल रहा और अंत में अपने महान चाचा की भांति उसका भी पतन हो गया। किंतु उसके पतन में भी सौंदर्य था। 1871 ईस्वी में प्रसा के साथ युद्ध में पराजित हो जाने पर उसे इंग्लैंड भाग जाना पड़ा और वहां उसकी मृत्यु हो गई। परंतु उसकी पत्नी महारानी यूजीन फ्रांस का उत्थान पतन देखने के लिए कुछ दिन और जीवित रह गई।